गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
ये सारी बकवाद सत्यार प्रकाश में कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जो समाज में अप्लीकेबल हो सके, और वेदों के अनुसार एक भी थ्योरी नहीं उन महापुरुष की। और मैं ऋषि उत्तरो परमात्मा की वो वाणी स्पष्ट हो जाती है, निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार। और पाखंडी की पूजा जग में संत ने कह लवाड़, अज्ञानी को परम विवेक की ओ हो, इस अज्ञानी को नो मैं ऋषि और ज्ञानी को मूड गंवार। कबीर परमेश्वर को नो तो अनपढ़ था, वो क्या जाने, वो तो अशिक्षित था, वो तेरा गजब ये। अब इन शिक्षितों की देख लो कारनामे, ये देखो अथ पंचम अध्याय प्रारंभ, पांचवा अध्याय यजुर्वेद का। इसमें प्रथम मंत्र में ही लिखा अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, दो बार ठोक का गवाही दे रखी है। अब इसका के अनुवाद किया स्वामी जी ने, हे मनुष्यो तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्ने, अग्ने का अर्थ के कर दिया स्वामी जी ने, अपनी उस अज्ञान छुरी को, उस रोंग छुरी को, उस कति अज्ञान सोच को के भगवान निराकार है जो सत्यार प्रकाश में लिख चुके हैं, उसको ऊपर रखने के लिए अनुवाद सत्य वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर डाला। अब देखो, हे मनुष्य तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्ने माने बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के, तनु माने शरीर के समान असी माने है, बता इसकी कोई सेंस बनी, इसका कोई अर्थ बनता है इसके इनके अनुवाद का। अर्षिदार से लिखते अग्नि माने हे परमेश्वर, तनु माने सह शरीर, असी माने हे परमेश्वर आप सह शरीर हैं, हे परमात्मा आप साकार हो, शरीर युक्त हो। अग्नि माने परमेश्वर लिख दो, यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज करना हमने, ये देखो ये अग्नि यहाँ लिख दे, हे मनुष्यों नहीं हे परमेश्वर, हे अग्नि माने हे परमेश्वर आप तनु माने सह शरीर असी माने है, आपका शरीर है, बस हे परमेश्वर आपका तनु माने शरीर असी माने है, नथिंग एल्स। ये वाक्य देखो, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, सोम माने परमेश्वर जगदीश्वर, इन्होंने स्वयं इस पांचवें अध्याय के और पांचवें अध्याय के 37वें श्लोक में खुद लिखा कि सोम माने परमात्मा। ये देखो पंचमा अध्याय और श्लोक नंबर 35 में, सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, सोम। अब संस्कृत जिसने थोड़ी सी भी आवा है ना, वो भी बना देगा इसका अर्थ, विष्णुवे तवा सोमस्य, ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर आपका, सबके पालन करने के, सबकी संभाल कर, विष्णु माने सबकी देखरेख करने के लिए भी तनूर माने शरीर असी माने है। सोमस्य अमर पुरुष का, हे तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबके पालन पोषण देखरेख के, जैसे यहाँ परमात्मा दूसरे रूप में आते तो भी तनु श्री वो अतिथि रूप में आते, अतिथे ये अतिथि, अतिथि माने अचानक आ जाना, कुछ दिन रहना फिर चले जाना, इसलिए भी आपका एक शरीर है। अब यहाँ देखो प्रथम यही इसी यजुर्वेद के अध्याय नंबर प्रथम मंत्र नंबर 15 में ये देखो, देख कितना कमाल कर रखा है स्वामी जी ने, कति खड़ा डंगा कर रखा है। ये देखो ये प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय और इसका मंत्र नंबर 5, प्रथम नंबर 5 में अग्नि माने सतुपदेश करने वाले परमेश्वर, ठीक। अच्छा फिर जहां भी अग्नि शब्द है, अब मंत्र नंबर 11 में यहां किया है अग्नि माने जगदीश्वर। अच्छा फिर देखो मंत्र नंबर 13 में इसमें लिखा है अग्नि माने परमेश्वर की प्राप्ति के लिए परमेश्वर अर्थ किया है। अब आ गया 15वां श्लोक प्रथम अध्याय का। आय हाय यहां स्वामी जी ने सोचा ये तो बहुत जगह आ गया अग्नि माने अग्नि तनुरसी। अब आ गया कि परमात्मा सह शरीर है, इन्होंने यहां क्या किया कि इन शब्दों के अर्थ नहीं करे। अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम तो ईशैदम इनके अर्थ नहीं कर रखे जो लाल निशान ला रखे। कहीं देख लो इसमें ये अर्थ है अग्नि, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, कहीं पर भी आपको अग्नि शब्द नहीं मिलेगा और ना तनुरसी। यानी ये शब्द अर्थ करने छोड़ दिए, इन्होंने सोचा किसने कौन पढ़ेगा कौन माथा मारेगा इसमें है, और अर्थ करना छोड़ दिया कि तेरी बात थ्योरी ठीक रही रहेगी सत्यार प्रकाश वाली कि परमात्मा निराकार है और वेद का सह शरीर है। अब देखो इन्होंने कीड़ंगा करा इस अनुवाद का, देखियो मैं सब जनों के हित सहित जिस हवि और पदार्थ अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और वनस्पत्य काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों को प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वान व विधि भोगों को प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। बता अब भगवान इन बड़े बड़े पत्थरान और काठ के मूसलान शर्म मारा का ग्रहण करके बताइए के करेगा काठ के मूसलान का और पत्थरा का। इसका अर्थ अन्य है जो दास ने किया हुआ है। अब इसका कुछ और ही बहुत निर्मल अर्थ है जो दास ने अनुवाद किया हुआ है। समय आने पर आपको मालिक की दया होगी, इनका सभी का पुनर्अनुवाद किया जाएगा। एक भक्त को मैंने ये अनुवाद कुछ करके दिखाया तो उस पुण्यात्मा ने ये सिद्धांत ये अपने विचार दिए कि अगर ऐसा अनुवाद ये होता इस वेदों का ये वेद घर घर में उपलब्ध होते। ये तो डंगा कर रखा मैं ऋषि के अनुवाद न पढ़कर शर्म दर्द हो जाए ना बिरा इसका सिर कित से इसका पैर कहाँ ये कहना के चाव है। तो परमात्मा क्या कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार अरे कालबली कहते धन है तेरे दरबार तेरे श्लोक में कितने भी कोई न्याय यानी सत्कर्ण की कोई भी सत्कर्ण कहने वाला नहीं है और सबको तूने भ्रमित करके ऐसा जुल्म करवा दिया। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक कालबली हर एक इंसान प्राणी को अपने रिमोट से चलाता है और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं इसका रिमोट काम करना बंद हो जाता है, तब हमारे परमेश्वर का ही रिमोट चलता है। नहीं परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा का आसन खिसक गया जब सुनी काल की गाज, जब काल दहाड़ा ना अपने उस 21वें ब्रह्मांड तय ब्रह्मा जी का आसन भी नो कांप गया था सारा, इतना भयंकर जो है ना इसका रौब है इनके ऊपर कबीर परमेश्वर के सामने जिसकी पार नहीं बसाती। अब ये एक प्रमाण आपको और देते हैं कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 जो महर्षि दानंद ने ही अनुवाद किया है सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 में उसने स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है मनुष्यवत। ये देखिएगा ऋग्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा भी इसका अनुवाद है वही है जो कहते हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन रामलाल मैदान नई दिल्ली से। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र 17। इसमें संस्कृत में है कि मनुष्यवत अग्नि मनुष्यवत अग्नि। स्वामी जी ने अनुवाद करना शुरू किया ए मनुष्यवत। ये देखो मनुष्यवत मनुष्य के जानने के आने के समान, इसका अर्थ है मनुष्यवत का अर्थ होता है मनुष्य जैसा और ये मनुष्यवत अग्नि ये अनुवाद ऐसे होता है इसका संधि छेद ऐसे होता है देखिएगा। ये वही है मनुष्यवत मनुष्यवत अग्नि इसका ये है संधि छेद मनुष्य, इसका मनुष्यवत अग्नि मनुष्य, ये ऐसे संधि छेद बनता है इसका, ये देखिएगा इस मनुष्यवत अग्नि का संधि छेद जो किया जाता है, जैसे ये यहां पर लिखा है मनुष्यवत अग्नि, इसका संधि छेद बनता है मनुष्यवत अग्नि। तो ये ऐसे अनुवाद बनता है कि हे मनुष्यवत मनुष्य के समान अग्नि माने परमेश्वर, आप अंगीरसवत मनुष्य के समान अंगीर शरीर धारण करके प्रत्येक युग में अपने सूचे माने पवित्र सदने माने घर तथा ऊपर के सतलोक से आते हो। पहले की तरह मनुष्य के समान अर्थात जैसे मनुष्य यत्न करके कार्य सिद्ध करता है, वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो, जैसे जुलाहे रूप में आकर काम करा। हे प्यारे परमेश्वर, हमें अच्छी प्रकार प्राप्त हो जिए तथा प्राप्त कीजिए अर्थात हमें शरण में लीजिए, इस काल लोक से बाहर बहिर्समन बाहर सतलोक में अपने जन को अर्थात अपने भक्त को देवम देव स्वरूप अर्थात अच्छी आत्माओं में स्थाई रूप से प्रतिष्ठित कीजिए। इसका ये अर्थ बने कि हे परमात्मा, आप हे मनुष्य जैसे भगवान, आप जैसे पहले आते रहते पूर्ववत, उसी तरह फिर आइए और हमें प्राप्त हो जाइए, यानी हमें शरण में लीजिए और हमें वहाँ अपने उस जो पहले आत्मा रह रही है आपके लोक में उन्हीं में जाकर के पुनः स्थापित कर दीजिए। अब स्वामी जी ने केड़ंगा करा, देखो मनुष्यवत अग्नि, इसका सीधा अर्थ बना है परमेश्वर जैसे मनुष्य जैसे भगवान नर नारायण, ये कहते हैं सूचे पवित्र अंगीरा मन प्राण के समान धारण करने वाले अग्नि विद्या के सर्वत्र व्यापक सभासद अध्यक्ष, अग्नि माने हड़ंगा कर दिया सभा अध्यक्ष, आप मनुष्यवत मनुष्यों के मनुष्यवत, संस्कृत मनुष्यवत है, मनुष्य जैसा होना चाहिए, मनुष्यों के जाने आने के समान वा और तेरा गजब हो, जब मनुष्यवत माने मनुष्यों के समान, अग्नि माने परमेश्वर, मनुष्यवत अग्नि है मनुष्य जैसे भगवान, अंगिरस माने शरीर, तो ये परमात्मा स शरीर, अंगिरसवत माने स शरीर, शरीर व्याप्त प्राण वायु के सदृश राज्य मकरम व्याप्त पुरुष के तुल वा ओ तेरा गजब हो। अब ये कर रखा है इसने डंगा, इसने वा का अर्थ होता या तो तू यू या तो या, यानी कोई सिर पैर नहीं इसका। अब ये दर्द हो रहा है उनके जो इन सत्यार प्रकाश और वेदों ने बेचकर रोटी खा रहे हैं, अपने दुकान चला रहे हैं, उन्होंने ये क्रोथाकांड करवाया, उन्होंने सोचा था रामपाल ने मार दो और इसका आश्रम लूट लाट कर नष्ट कर दो, इसका यु प्रचार चले नहीं, ये तो भूल गए इस बात ने, जिस तरह अंधा गधा रेल की लाइन पर खड़ा होकर और रेल के लात मारे भगवान के मार्ग में और जो बाधा करे वो तो अंधा गधा है भाई, वो टुकड़े टुकड़े कर देगी वह रेल आवेगी जो, क्योंकि उसका मार्ग है वो, तो उसके सामने किसकी पार पसा वो बकवाद करें खाम का। तो ये परमात्मा का मार्ग, इसका अगर जो भी अड़ेगा उसकी बिरान मट्टी हो जाएगी और देख लेना ये पूरे विश्व में जाएगा। बोलो सतगुरुदेव, परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, कबीर देव जी, इस काल के लोक में आते हैं और अपनी प्यारी आत्मा, अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में फंसी हुई है उनको यथार्थ ज्ञान बताकर, तत्व ज्ञान बता करके अपने ही लोक में सतलोक में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। जिसमें परमात्मा आते हैं, परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं और उस प्रत्येक युग में एक नाम से वो सुप्रसिद्ध रहते हैं, उसमें वो एक जन साधारण जैसी भूमिका, एक जन साधारण जैसी लीला करते हैं, भूमिका करते हैं, उसमें वो स्वयं एक भक्त की भूमिका भी करते हैं, एक तत्वदर्शी संत का रोल भी करते हैं और वो भगवान भी होते हैं। भगवान तो होते ही होते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम रहा था प्रभु का, और प्रत्येक युग में ऐसे ही आते हैं, एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं और किसी सरोवर में कमल के फूल के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। और प्रत्येक युग में ऐसे ही निसंतान दंपति प्रभु को ले जाती है और फिर वो उनका कवारी गायों से परवरिश होती है। फिर वो ज्यों ही अपनी लीला करते हुए बड़े होते हैं, अपने छोटे ही आयु से, 4-5 वर्ष की आयु से ही वो अपने तत्व ज्ञान को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं, और उनके विचारों को सुनकर उस समय के विद्वान पुरुष आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके पास कोई प्रश्न उत्तर नहीं होता, जवाब नहीं होता। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता में मुनिंदर ऋषि जी के नाम से आते हैं, वही उसी प्रकार एक पूरा जीवन मनुष्य का जी करके उस समय के कर्तव्य कर्म करते हुए, स्वाभाविक कर्म करते हुए और यथार्थ भक्ति साधना करते और कराते हुए एक पूरा जीवन बिताते हैं, और ऐसे सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। द्वापर में परमात्मा करुणामय नाम से आते हैं, उसी तरह लीला करते हैं, और कलियुग में परमेश्वर अपने वास्तविक नाम के से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से। और उसी प्रकार एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं और फिर सहस पूरा एक जीवन, जैसे जुलाहे का रूप धारण किया, जुलाहे की भूमिका की, सातवें तत्वदर्शी संत की भूमिका की, और एक सुयोग्य शिष्य की भी भूमिका की कि एक भक्त में, एक दास में कैसे गुण होने चाहिए, वो भी परमात्मा ने रिहर्सल करके हमारे लिए उदाहरण छोड़ा। हम उसको देख करके अपने जीवन को बहुत बार सुचारू करते हैं। जब कभी ये मन हमारी जीवन की गाड़ी को पटरी से नीचे ले जाने की चेष्टा करता है, तो हम परमेश्वर के उस ज्ञान और उस भूमिका से अपने आप को सेट कर लेते हैं। परमात्मा आपको किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होने देगा, कबीर जी ये समर्थ शक्ति है, लेकिन ऐसी वस्तु जो आप डिमांड करते रहोगे वो नहीं देंगे जो आपके मोक्ष में बाधक हो। पुण्यात्माओं, यदि आपने यही जन्म मृत्यु के चक्कर काटने हैं और इसी काल के जाल में रहना है तो और संत बहुत हैं, वहां अपना जाओ, धक्के खाओ और मरते जन्मते रहो। यहां केवल हमारा मूल उद्देश्य ये है कि आपका जन्म मृत्यु का रोग यूं सदा के लिए कटे। उसके लिए आप जी को परमेश्वर के प्रत्येक नियम का पालन करना होगा। अब जैसे आप ज्ञान सुनकर आते हो, 10% भक्त जन केवल यही सुनकर आते हैं कि वहां पर सब दुख दूर होते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि यहां पर सब दुख दूर होते हैं, लेकिन एकाद दुख ऐसा होता है जो परमात्मा दूर नहीं करेंगे, जो कि आपको उसके दूर करने से आपका मोक्ष मार्ग में बाधा बन जाएगा और ये काल का चक्कर ज्यों का तो बना रहेगा, तो उस सुख को आपको नहीं देंगे, उस दुख का निवारण नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई निसंतान है, वो यहाँ केवल संतान के लिए ही आता है, क्योंकि ऐसे लाखों हजारों कई लाख उदाहरण हैं जिनके आठ आठ वर्ष, कई हजारों उदाहरण हैं जिनके आठ आठ दस दस बीस बीस वर्ष पंद्रह पंद्रह वर्ष शादी न हो गए थे और उनका संतान दे दी परमात्मा ने आते ही। और कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं दो चार दस जो मुझे मेरी नोटिस में हैं कि उन्होंने लगभग चार पाँच छः वर्ष उपदेश लिया नवलियर, उनका संतान मालिक ने नहीं दी और वो दृढ़ता के साथ फिर भी मालिक पर विश्वास किए हुए हैं कि जो परमात्मा करेंगे हमारे लिए सही करेंगे। इसके बीच में एक बहुत बड़ा रीज़न है, कारण है। जैसे द्वापर युग में परमेश्वर कबीर देव जी आए थे, उसमें एक सुदर्शन यानी बाल्मीक जाति में उत्पन्न सुदर्शन नाम के एक भक्त थे, उनके माता पिता परमेश्वर के चरणों में नहीं आए, उन्होंने भगवान के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था और सुदर्शन जी के वो ज्ञान 100% समझ में आ गया था और समर्पण भाव से प्रभु के चरणों में लगा था। सुदर्शन जी के माता पिता बार बार प्रार्थना करने पर भी परमेश्वर के चरणों में नहीं आए, उनका उपदेश नहीं लिया, वो शरीर छोड़कर चले गए। सुदर्शन जी ने परमात्मा से एक ही प्रार्थना की रह रहकर कि परमात्मा मेरे माता पिता बहुत ही नेक आत्मा थे और वो शास्त्र विरुद्ध साधना भी करते थे, आपके ज्ञान को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, प्रभु आप किसी जन्म में जब भी उनको मनुष्य जीवन मिले आप अपने चरणों में लेना। अब तो वो नहीं मान पाए, दुर्भाग्य था उनका। ये कई बार प्रार्थना की, परमात्मा उनको कहते रहे कि सुदर्शन आपका और आपके माता पिता का इतना ही संयोग था, आप चक्र में क्यों पड़ रहे हो, वो अपने कर्म पाएंगे, आप अपने कर्म बनाओ। तो कुछ दिन वो चुप रहता था लेकिन फिर भी वह कमजोरी रह रह कर उदय हो रही थी। परमात्मा ने सोचा कि ये नालायक माँ बाप के ममता में यो भी काल के जाल में पाँव फंसाए रह जाएगा, ये भी पैर फंसा लेगा। तब परमेश्वर ने कहा था बेटा चिंता मत कर, तेरे माता पिता को मैं पार कर दूंगा। जब परमेश्वर के मुखारविंद से ये शुभ वचन सुने तो वो निश्चिंत हो गया कि अब प्रभु ने वचन दे दिए हैं, अब उनका कल्याण होगा ही होगा। तो इस प्रकार उस सुदर्शन जी का सतलोक गमन हुआ, नहीं तो उस ममता व सतोगुण का जो प्रभाव है वहां तक काम कर रहा था और उसको भी फंसा लेता जब समरस शक्ति अपने तरीके से उसका वो टेंशन खत्म ना करते। परमात्मा के पास हर तरह के तरीके हैं, वो ना जाने कौन सी विधि से कौन सा आपका दुख निवारण कर देता है। तो उसके बाद सुदर्शन जी का हृदय में पूर्ण रूप से ये हो गया कि तेरे माता पिता अवश्य पार होंगे। अब वो सुदर्शन के माता पिता कलयुग में उनका जन्म हुआ तो उस समय उनका योग, उनके जो है प्रारब्ध में संतान नहीं थी। परमात्मा चाहते तो उनको संतान के ना जाने कितनी दे देते हैं, लेकिन उनका मोक्ष करना था, वचनबद्ध हो चुके थे, इसलिए परमेश्वर ने उनके भाग में थी नहीं और परमात्मा ने भी उसको संतान नहीं दी। उनको स्वयं ही संतान रूप में बनकर उनके घर पहुंच गए और उन पुण्यात्माओं का कल्याण किया। पुण्यात्माओं यहाँ जिसका भी जो संयोग है पुत्र या पुत्री का, ये पिछला कोई लेन देन है, ये सत्कर्म मान लेना। एक कथा हम सुना करते थे जो आज बिल्कुल सत्य नजर आती है कि दो भाई थे किसान और बड़े की शादी हो चुकी थी, शादी होते ही माता पिता का देहांत हो चुका था, दोनों का माता पिता का देहांत हो चुका था। बड़े की शादी हो चुकी थी और छोटा भाई उस समय 13-14 वर्ष का था, वो बीमार पड़ गया। उनके जमीन अच्छी थी, यानी 20-30-40 एकड़ जमीन थी। छोटा भाई बीमार हो गया तो उसकी काफी ट्रीटमेंट करवाया, कोई लाभ नहीं मिल पाया। अंत में दोनों पति पत्नी ने क्या सोचा कि अब सु अवसर है, आप अपने भाई को, यानी उनकी अपनी सोच, उसकी पत्नी ने कहा कि इसको ये मर ही जाए तो अच्छा है, संपत्ति अपनी हो जा। भाव ये है कहने का कि दोनों की एक राय होगी कि अब तो किसी का ये भी ना होगा कि न जान के मार दिया। और वो सोतेला भाई था, छोटे वाला जो था सोतेला भाई था, यानी पहला जो था वो दूसरी माँ का और दूसरा था वो दूसरी माँ का, और फिर भी दोनों, पहली पत्नी उसकी मर गई थी, फिर वो दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, ऐसी स्थिति थी। तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से कि इस अपने सोतेले भाई को मरवा दे और फिर ये जमीन सारी अपना हो जाए, ऐसा ही उन्होंने सोच साच कर एक डॉक्टर, जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, उससे बात कर ली, भाई तू इसका काम कर दे। उसने कहा मैं 500 रुपये लूँगा चांदी के, आज तो 5 लाख रुपये बने हुए। तो उन्होंने 500 रुपये दे करके अपने भाई की मृत्यु करवा दी। अब उसने 500 रुपये दे करके डॉक्टर को अपने भाई को विषाक्त औषधि खिला करके मृत्यु को प्राप्त करवा दिया, यानी उसकी मौत होगी। तो दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद, वर्ष 10 महीने वर्ष के बाद उनका एक सुंदर पुत्र की, यानी सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इकलौता पुत्र, अच्छी संपत्ति, खूब गाय भैंस रखें, दूध खूब। तो गिने दिनों में, यानी कुछ ही वर्षों में, पहले 12 वर्ष की उम्र में शादी कर दिया करते थे और उसमें दोबारा विवाह नहीं होता था। उस लड़की को जो मान लिया किसी का पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको साथ ही जिंदा को फूंक दिया करते थे, यानी सती प्रथा थी। अब क्या हुआ कि जब वो लड़का 17-18 वर्ष की उम्र का हो गया, उसकी शादी कर दी, ब्याह कर दिया। विवाह होने के तुरंत ही बाद वो लड़का बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया, इतना उसको भयंकर रोग हो गया कि कहीं इलाज नहीं हो पाया। मुंह मांगे पैसे, यानी जिस भी वैद्य ने जो भी कीमत कही वही दे दी, और जैसी भी कॉस्टली से कॉस्टली मेडिसिन वो लाने के लिए कहा उसने वही बता दी, पैसे दे दिए। फिर जंतर मंतर करने वालों के पास खूब लौटे, जाड़े जूड़े लगाने वाले के पास भी खूब ठगाए। कहने का भाव ये है कि उनकी आधी जमीन उन्होंने बेचनी पड़ी, सेल करके उस बच्चे की बीमारी पर लगा दिए। जब वो आधी जमीन बिक चुकी तो वो लड़का एक दिन अपने पिता से कहने लगा, जो दुखी हुआ बैठा था उस बीमार बच्चे के पास, वो लड़का कहने लगा कि भाई साहब अब मेरा और तेरा हिसाब बराबर हो चुका है, अब मेरे तेरी तरफ कफन के और लकड़ियों के पैसे शेष रह रहे हैं, उनकी तैयारी कर ले, मैं अब जा रहा हूँ। तो वो एकदम सहम गया कि यह आवाज़ आव है जैसे बड़ी कड़ाके की, और ये मुझे भाई कह रहा है ये लड़का। तो उसने पूछा कि बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं हूँ तेरा। पहले तो उसने सोचा कि देख बच्चा बीमार ज़्यादा है, पहचान ना रहा हो। तो वो कहने लगा कि मुझे सब पता है, तू मेरा के है, बाप है या भाई है मैं खूब जानता हूँ। मैं तेरा वो भाई हूँ जिसने जिसको तूने जहर दिलाकर मारा था, और भाई तेरा मेरा हिसाब बराबर हो लिया। तूने इसी लालच में मुझे मरवाया था कि आधी संपत्ति है या भी तेरी हो जा, पर वो मैंने अपनी पूरी कर ली। अब वो करे हुए का कर्म अब सामने आ गया, उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब वो आंखों में पानी भरकर कहने लगा, भाई इस दुष्ट पापी ने जो कर्म पाप किया था वो मेरे आगे आ गया, जो मेरा किया हुआ दुष्कर्म था वो मेरे सामने आ गया। भाई ठीक है, एक बात और बता दे भाई, मेरा तो पाप ठीक है मेरे सामने आ गया कि मैंने तेरे को जहर देकर मारा, और वह संपत्ति जिसके के लिए मैंने तुझे मारा था वह भी गई, मेरा तो किया कर्म सामने आ गया। पर ये एक बात बता, जो तेरी वधु है, तेरी पत्नी है, इसने के पाप कर दिया, ये तेरे साथ जिंदा जलाई जाएगी। तब उसने बताया कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मेरे को जहर दिया था। उसने कहा कि वो तेरे से 2 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी, कि वही मेरी पत्नी रूप में आया है, अब यो जिंदा फूकी जाएगी, वही दुष्ट जिसने मुझे जहर दिया था। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। तो जो संतान आपको प्राप्त है ये आपके पूर्वले संयोग से है, पूर्व जन्मों के संयोग से है, और अंत समय में ये सब 12 बाट हो जाते हैं, 12 बाट मैंने अपनी अपनी दिशा को चले जाते हैं। जैसे एक ही परिवार में एक सदस्य उपदेशी है बाकी नहीं है, तो जो उपदेशी नहीं है वो तो ना जाने कहाँ जाएंगे, कोई गधा की जो नहीं पाएगा, कोई अच्छे पुण्य कर्मी है तो स्वर्ग चला जाएगा कुछ समय, और पाप कर्मी ज़्यादा हैं वो नरक में चले जाएंगे, यानी 12 बाट अपने अपने कर्म आधार पर ना जाने कहाँ जा करके फिर पुनः जन्म इनको प्राप्त होगा। तो परमात्मा भी कहते हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे। इस दृष्टिकोण से परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जिनका संतान नहीं है उनका पिछला बखेड़ा समाप्त है, उनका कोई लणियार नहीं है, पिछले जन्म का कोई डिमांड कोई ऋणी नहीं है वह किसी के। अब वो चाहते हैं कि हम ऋणी हो जावा, परमात्मा नहीं होने देगा। अब शुगर के मरीज को बताओ कौन चीनी खाने का अलाउड करेगा, डॉक्टर तो नहीं कर सकता। तो ऐसे स्थिति में जिनको संतान नहीं है और वो संतान उद्देश्य से यहाँ आए हैं, कुछ दिनों के बाद 1 वर्ष 2 वर्ष में उनको ये समझ में भी आ जाएगी कि ये क्या ज्ञान है, तो फिर उनको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ भी अगर संतान नहीं है तो पृथ्वी पर कोई संतान देनी भी नहीं है आपको, इसलिए परमेश्वर के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए, प्रभु जैसे आप रखो ऐसे ही ठीक, अपना पीछा छुटवा लो। फिर क्या होगा, मान लीजिए वो यहाँ से छोड़कर कहीं चले जाएंगे, फिर यु काल उनकी के द्रुप्ति करेगा, लोरे तो मिलने को नहीं, संतान तो मिले को नहीं, अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो क्या होगा उनके साथ में, अंत समय में वो संतान की तरफ में मर जाएंगे। कैसे होगी द्रुप्ति उन लोगों की, पहले समय में तो एक दूसरे की शर्म लाज बहुत गणी थी, मान ले किसी का भाई का या बहन का कोई बच्चा गोद ले भी लिया तो वो थोड़ी बहुत सेवा कर दिया करता था बुढ़ापे में, और आज तो कति भट्ठा बैठ रहा है, वो किसी की मान ले किसी की के पुत्र को गोद ले लेंगे, और जब वो बूढ़े होंगे वो कोना सेवा करे, सेवा नहीं बन सकती क्योंकि वो पाप, जैसे मान लिया अच्छे भी कोई मिल गए बच्चे और उनका जो पीड़ा हो रही है दर्द है वो तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा, बच्चे हैं वो बैठकर रो सके हैं, दुख में दुखी ही हो सकते हैं, उसका उस किए हुए पाप का बंटवारा नहीं कर सकते। दूसरी बात उसके मन में के आवेगी जो गोद ले रखा होता है, वो लड़का से कितनी सेवा कर ले और उसकी पत्नी भी कर लो, लेकिन उनका पेटा नहीं भरा। उनके मनो में न्यू होगी, जब मेरी मेरा पुत्र होता तो आज मेरे इतनी सेवा करता है, क्या मुझे इतना दुखी होने देता। कहने का भाव यह है कि अंतिम समय में भी वो पुत्र यानी संतान प्राप्ति की डिमांड में मर जाते हैं। फिर यु काल उनको क्या देता है, सुअर सूरी बना देता है, उस बहन को फिर सुअरी बना देता है। कहता ले तेरी डिमांड संतान की थी, अठारह अठारह पैदा कर एक सीजन में, अब नो ब्रह माटी करेगा उसकी, ले अठारह अठारह जाम ले तने संतान की भूख थी ते। तो पुण्यात्मा ये समय दिया प्रभु ने, ये तत्व ज्ञान दिया परमेश्वर ने, इसके आधार से इसके रोशनी में इस काल के कांटे से निकली दो द्रको कर अपना भाग लो, सतलोक की तरफ दौड़ लगा दो। दे तो भला परमात्मा की रजा है, उसके बच्चे को हम पाल पोष देंगे, और मान ले हमें नौकरी नहीं देता किसी बच्चे की, तो कोई बात ना, अपना कल्याण करवा के और पीछा छुड़वा लो। तो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं, अपने इस तत्व ज्ञान को स्वयं ही समझा बुझा के अपने बच्चों को यहाँ से हलाते हैं, यहाँ से उनको काल के जाल से निकालने के लिए तैयार करते हैं। क्या बताते हैं भाई, और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उमदा चोला बनया अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बनया अनमोला ये लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद कांचड़ी चढ़री चत पे तू होया मनुष्य से नाग रे, कुबद कांचड़ी चढ़री चत पे तू होया मनुष्य से नाग रे, सूझ नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई अर सुमर सो हंस कवावे ये कमी क्रोधी कागरे, अर सुमर सो हंस कवावे ये कमी क्रोधी कागरे, बौरा न ब्रह्म विष के बन में चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, केसो गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी पाया अटल सुहाग रे, नितानंद महबूब गुमानी प्रगट पूर्ण बाग रे, प्रगट पूर्ण बाग रे, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, केसो गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब अब क्या बताया है इस शब्द में, इस वाणी में, ये शब्द जो है वैसे कबीर परमेश्वर जी का है। इसमें लास्ट वाली जो लाइन है दो, इनमें परिवर्तन है और इसके स्थान पर परमेश्वर की एक वाणी और है, एज इट इज ज्यों की तो वो कबीर शब्दावली के अंदर, कबीर शब्दावली के अंदर लिखी हुई है। उसमें एक और दोहा है, एक और कली है उसमें, भाई ऊठ सवेरे ओका भर लिया के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे ओका भर लिया के जाग्या नर भाग रे, राम भजा ना सुमरण की ना फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। मान लीजिए ये दो तरह का जागना बताया है, एक तो सुबह उठते ही प्रभु को याद करे तो उस जागण का लाभ होया, एक नो के उठते उक्का ठोक लिया और गुरुर गुरुर फिर खूब खूब फिर धुमा पूरे परिवार ने कमरे में ठोक दिया, बच्चे सो रहे हैं, पोते पोती बेटा बेटी या उन उनको भी पै दिया साथ में सोते सोए हुओं को, तो फिर के जागे नर भाग रहे, इस था पड़ारन था पाछे उठ ले और बड़का ते तो जाग गए तो भगवान ने याद करे। दूसरा जागना ये है कि हम इस काल की, इस माया का मोह ममता की नींद में हम सोए पड़े हैं और परमात्मा की ये प्रेरणा, ये आवाज़ प्रभु की जो ये दास लगा रहा है, एक परमात्मा का भेजा हुआ कुत्ता बनकर आप धनियों को जगा रहा है भौंक भौंक के, तो कहते हैं वो जाग गए वो, और जाग गए फिर भक्ति पर लग जावे। तो जगना ये है कि तू जिस व्यवस्था को, इस संसार को, संपत्ति को, परिवार को अपना मान रहा है, ये तेरा को नहीं, ये तेरा नहीं है, ये जागना है, ये भगवान के बच्चे हैं, वो तेरे संयोग संस्कार वश तेरे पास आए हुए हैं, अपना अपना संस्कार पूरा होते हुए वो चले जाएंगे, तेरे डटे नहीं डटेंगे। जिसका भी जब संयोग पूरा हो जाएगा वो वहीं शरीर छोड़ जाएगा, किसी के रोके नहीं रख सकते। मेरी शरण में आ जाओगे, प्रभु की शरण, कबीर परमेश्वर कहते हैं मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं फिर तुम्हारे ये जो संस्कार है इनको भी ठीक ढंग से पूरे करवा दूंगा। और मान लीजिए किसी बालक की मृत्यु होनी है और उसने नाम ले लिया और वो सही नियम पर रुक रहा है तो उस बच्चे को भी जीवन दे दूंगा, मेरी तो सारी आत्मा मेरी है तो उसका भी कल्याण करूंगा और तुम्हारे चोट भी ना लगेगी, बेटा मर गया उनका तुम्हारा लेन देन भी ठीक करवा दूंगा। पर तुम गफलत कर जाते हो परमात्मा के चरणों में, मान लीजिए आपका ऐसा शुभ संस्कार है कि अभी कोई चोट लगनी नहीं और आप इस शरण में आ गए, आपको और लाभ गणा मिल जाएगा क्योंकि पहला संस्कार तो अच्छा है ही, हर साथ में ये मालक का और एक्स्ट्रा एड मिल गई, तो और बने सुखी हो जाओगे, फिर क्या होगा, फिर आप गफलत अवश्य करोगे। ये नियम है इस काल का, इसका इस लोक का। और गफलत करोगे तो कितना लोक लाज में आकर कोई नियम भंग कर दोगे, और नियम भंग होने के बाद मान लीजिए कोई ऐसा बुरा संस्कार आपका आसपास था जिससे कोई घटना दुर्घटना जबरदस्त घटनी थी, तो फिर वह घट जाएगी, वो आपका चोट लग जाएगी, क्योंकि आपने परमात्मा का जो कंबल दिया था सर्दी से बचाव के लिए वो उतार दिया, फिर नमूनिया होगा ही होगा। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि ऐसा जो आपको दुख निवारण नहीं करूंगा जिससे तेरा मोक्ष मार्ग में बाधा बढ़े। इसलिए परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि तुम एक डिमांड और कर लियो, कहते सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हर देसे जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे भगवान ऐसा सुख भी ना दिए जिससे तेरा नाम भूल जाऊं, आग लगे इसे सुख है, और वो दुख ऐसा दुख भी वरदान है हमारे लिए जो आपकी याद दिलाता रहे, रह रह के आपको याद करता रहूं, ऐसा दुख भी दिए रखना परमात्मा कि तेरी भूल ना पड़ जाए। तो ऐसा परमेश्वर अवश्य रखेगा आपको पार करने के लिए। हमें बार बार क्या चेतावनी देते हैं परमात्मा, मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द जैसे शब्द स्वरूपी राम अविनाशी परमेश्वर, शब्द कभी नष्ट नहीं होता, शब्द सिंधु, सिंधु माने वहां अविनाशी अमर तव का सागर है, शब्द सिंधु रत्नागर। ओहो रत्न मोक्ष रूपी रत्नों का आगार माने डिपो, यानी खान है वो। तो क्या कहते हैं, मन चल रहे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं कि जहां दुख ना हो, जैसे सागर में समुद्र में जहां तक देखे जल ही जल होता है, उसमें अन्य वस्तु नहीं होती है। तो इसी प्रकार सुख सागर का अर्थ है कि सतलोक वो स्थान है जहां दुख नहीं है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई ही। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे दिन में या दो चार दिन में एक कुछ अक्षण ऐसे आते हैं, आत्मा इतनी आत्मविभोर हो जाता है ये प्राणी, और अंदर से एक इतनी अच्छी हिलोर सी उठती है कि दुश्मन भी दुश्मन नजर नहीं आता है, सब अपने से नजर आते हैं, उसके प्रति भी प्यार भर आता है। लेकिन वो होता है थोड़ी सी देर का, वो जो सुख है वो बिल्कुल नारा है ना, वो कितनी संतान उत्पत्ति तो वो संतान प्राप्ति से हो सकता है, ना चाहे करोड़ रुपये धन मिल जाए उससे भी वो सुख वैसा नहीं हो सकता। वो शंखों लहर मेहर की उपजे, उस सतलोक के अंदर ऐसी ऐसे सुख, ऐसा ऐसा जो प्रेरणाएं हैं हिलोर, शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। यहाँ तो वो कुछ ही अक्षणों की होती, वह मेहर की लहर यानी सब पर दया आती है, और उसके बाद फिर वो जो के तो कहर की लहर, नो कर दूंगा नो कर दूंगा, वो लड़का आज फेल हो गया, देख उसने एक साल खो दिया, मैस नहीं नहीं हुई, काटड़ा मर गया, यानी इस तरह के फिर वो कहर की लहर शुरू हो जाती है। यहाँ तो मच्छर से लड़े मिनट मिनट में इस पाप कर्मों के प्राणी के। तो परमात्मा ही दया करेंगे, ये तत्व ज्ञान और अपनी सतभक्ति रूपी मच्छरदानी आपको देंगे, जिससे आपको आपके संकष्ट जो है नहीं आएंगे, आपको नहीं परेशान करेंगे पाप कर्म। एक यहां पर बहुत से एक ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि किसी एक परिवार ने नाम ले लिया, और उनका भूत बड़े थे। यहाँ तो ये ट्रीटमेंट तो वैसे होता है, ये तीन ताप का जो दुख है तो वैसे फरी ये तो अपने आप भाग जाते हैं, इस परमात्मा की मंत्र जन या अभ्यास से जाप से अपने आप भाग जाते हैं। तो वो उनके भूत फिर उनके रिश्ते यानी उन्हीं के चाचेता हुआ हम चले जाए सारे, तो वो भूत जाकर बोल रहे हैं कि वहां तो हम ना जावा थारा आगे आपका आगे, तो वो चले फिर शाणा के उन जो है ना दुनिया बर्बाद करने वाले मूर्खों के पास जाड़े लानियां दर, वो इन्हों के हैं कि तुम्हारे उन ने अपने भूत थारे भिजवा दिए, ये जो सतलोक आश्रम क्रोथा में आते हैं वो इन्हों उनको उनके तरह को नहीं वहां, क्योंकि उनका तो मच्छरदानी लाग गई। अब वो दूसरों के वो कहते हैं कि उन ने करवा दिया थारा, वो सारे तुम्हारे भिजवा दिए। अब वो जो उनके मूर्ख बक आए हुए फिर वो मारे भगता गए लड़नों के, तुमने मारा भिजवा दिया अपने भूत, तो वो आके कहें जी हमने रोज दुखी करें लड़ाई करें हमारे साथ, तुम्हारे उन अन्यों का जो तुम मारा भिजवा दो हम के नाट, हाँ तुम भिजवा दो मारे बेटी, तुम्हारे तो मच्छरदानी लाग गई, ये मच्छर तो उनका लड़ेंगे जिनके मच्छरदानी ना लाग रही, या सत परमात्मा की सत भक्ति रूपी मच्छरदानी तुम उन कलवा दो उनके भी भाग जाएंगे कि तो और ठिकाना ढूंढ लेंगे। कहने का भाव यह है कि परमात्मा के पास ये देवी देवता भूत पितर जाकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए कबीर परमेश्वर के पास, जब काश बनारस में रहा करते हैं, एक जुलाई की भूमिका कर रहे थे, तब वो गुरु रूप में थे परमात्मा, सतगुरु रूप में थे, वो यही कहा करते कि ये भूत पूजा पितर पूजा देव पूजा कति त्याग दो, तुम्हारी गीताजी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में मना किया है कि भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, पितर पूजेंगे पितर देवताओं को पूजेंगे, उनके नौकर वहीं जाकर उनके पास रह जाएंगे और भगवान के पुजारी भगवान को मिलते हैं, तुम क्यों फिर ये डले ढो रहे हो। तो सभी जो भक्त थे वो परमात्मा के आदेश का पालन करके उन पितरों और भूतों की पूजा त्याग देते थे, और मंत्र के सामने ये परमात्मा का जो जाप दिया जाता है ये भूत पितर प्रेत भाग जाते हैं कुछ दिनों में आप पट छित के। तो अब उनको परमात्मा के पास ये सभी जाकर खड़े हुए कि हमने ठोर बता गुरु महाराज जी आपके पुजारी तो हमें नहीं पूज रहे हैं, परमात्मा बोले जो मुझे नहीं पूजते वो उनको लूटो खाओ, जो मेरी पूजा हमारी पूजा नहीं करते जो मेरे शरण में नहीं है बाकी तुम्हारे लिए है उन्हें खाओ, उनके उनसे धुरवा लो पांचों लत्ते हैं बनवा लो मंडी उन तजा करके कुछ भी करवाओ। देवी देव ठाडे भय हमको ठोर बताओ, परमेश्वर बोले जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, देवी देव ठाढ़े भये कि हमको ठोर बताओ हमें जगह दो कहाँ जाएं, परमात्मा बोले जो मुझको नहीं पूजते वो उनको लूटो खाओ, उनके पास जाओ वो तुम्हारे लिए छोड़ रखे। तो पुण्यात्मा जो भी परमेश्वर की शरण में समर्पण हो जाएगा ले लेगा उनका ये पितर भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। अगर वो कुछ दिन परेशान करते हैं तो आपकी वीकनेस के कारण आप दोगले से चलोगे जब तक होगा, जिस दिन आप अनन्य मन से प्रभु के चरणों में समर्पण कर दोगे फिर नहीं रहेंगे, ढूंढे भी ना पाओ पड़ोसियां तो भी दूर भागेंगे, आपके घर में जो परमात्मा की मंत्र वाणी चलेगी उससे भी उनका तीर से लगते हैं, ये भाग जाते हैं डरते, इस मालिक की वाणी में इतनी शक्ति है। और मंत्र का तो कहना है कि जो जाप आपको दिया जाता है सिमरन करने का मोक्ष के लिए तो है ही है, लेकिन अन्य जो दुखदायी तत्व हैं वो भी दूर भाग जाते हैं। आपके ऊपर कभी भी कोई आपत्ति आवे किसी भी प्रकार की कोई आकृति भयंकर या अपने कोई स्वप्न में एक अपना नियम बनाओ, याद रखो इस बात को, उसी समय आप जो है ना श्वास का सिमरन जो सतनाम है इसका सुमरण शुरू कर दो, तो उससे सिमरण करते ही वह सब भाग जाएंगे, निकट नहीं रहेगा चाहे कितने भयंकर आपके ऊपर आपत्ति आ गई हो। इस प्रकार यहां भी परमात्मा कहते मेरी शरण में आ जाएगा तो तुझे ये तो सुख दूंगा ही दूंगा और मोक्ष दूंगा, तो क्या कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। तो उस सुख सागर यानी सतलोक में चलवा ना मृत्यु है ना बुढ़ापा है और न ही कोई रोग है, ना कोई कैंसर है, ना कोई एड्स है, ना कोई किसी प्रकार का और पेट में दर्द हो, ना कोई बीपी लो ना आई हो, ना कोई शुगर बने, ऐसा अच्छा शरीर हमें मिलेगा वहाँ पर जो बिल्कुल उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, कोई रोग नहीं होता। अपुण्य आत्मा अपनी मृत्यु तो होगी इसमें तो नो डाउट, मृत्यु तो होगी ही होगी, 10 दिन आगे पाछे होगी, लेकिन मृत्यु के बाद हमने वापस यही आना है तो यह सांग फेर पाओगा, यही प्रोसीजर फेर है। अरे अब तो और बुंडा काम हो रहा है, बच्चा 3 साल का हुआ ना और इतना बड़ा बैग उसकी कमर पर टांग कर 25 बुक डाल कर नो चल बेटा स्कूल में है, अब उसका याद हो कर देना तो ट्यूशन ला दो, अब कभी फेल कभी पास कभी बीमार कभी कुछ, फिर मर पड़ कर ब्याह हो गया, ब्याह होने बालक बालक कोई मर गया कोई बच गया है, और किसी की नौकरी ना लगी, किसी की कोई विधवा लड़की विधवा होगी, यानी ये ब्रान माटी फिर शुरू, मनुष्य जीवन तो हो गया इसमें सुख को नहीं। और जय फिर इस 84 लाख खड़े कोलो में पड़ गए गधे कुत्ते सुअर में, फिर सुख नाम की बात कहाँ बाट कहाँ देखे, हम तो वैसे तो सुख यहाँ भी नहीं है पर इस झूठे सुख को हम सुख मान रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल सभी ना काल का, ये काल का आहार है सभी, और कुछ मुख में कुछ गोद, किसी को आज खा लेगा बाकियों को सपेर रख रहा कल के लिए, तो इसने एक को भी नहीं छोड़ना सबको खाना, चाहे राजा है चाहे रंग। हाँ कबीर परमेश्वर की शरण में जो इस दास के मंत्र के साथ लगे हुए हैं उनको काल नहीं खा सकता, उनके निकट नहीं आएगा, उनको तपतशिला पर नहीं जाना, ना वो कुत्ते गधे सुअर बनेंगे। सतगुर के उपदेश का सुनिया लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वारे, नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचा ताने, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी, ओए होए चार खानी में भरमते कभू ना लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकारे, ओए होए। यदि अब कहते अब दिमाग में आवे ये बातें, अब माइंड काम करे हमारा, जय मालिक ना मिलते ये सतगुरु ना मिलते के ब्रानवाटी होती, ओए होए। आपको एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखाता हूं, इसे इसे साधक दो वेदों अनुसार साधना करने वालों की क्या दुर्गति हुई। मैं एक महावीर जैन जी के का इतिहास आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाऊंगा, समझदार को संकेत बहुत होता है। ये देखिएगा एक बुक है आओ जैन धर्म को जाने, बुक का नाम है आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नमाला 3500 प्रश्नोत्तर, कौन बनेगा सबसे ज्ञानी, अणो हरि अनंतान, अणाम ये इनका कोई और सौदा है, प्रवीण चंद्र जैन MA शास्त्री इसके दो, ये इसका लेखक है, खेल खेल में आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन MA शास्त्री जम्बूदी वस्तनापुर, प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन जम्बूदी वस्तनापुर मेरठ। अब इसके 294 पृष्ठ पर ये देखिएगा, 293 पृष्ठ से शुरू करते हैं, विशेष प्रकरण आओ जैन धर्म को जाने 293 पर। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम है, वीर अतिवीर संति महावीर MM वर्धमान, ये महावीर जैन के नाम हैं। यह प्रश्न किया है आप पे उत्तर दिया है कि श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरा नामक भील की पर्याय से, एक पुरुरुआ नामक एक भील था वो पहले, उसके बाद पुरुरा भील कौन था, उसने क्या किया, पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में एक भीलों का राजा था, उसने सागर सेन मुनिराज से मद मांस मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन भर पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की प्रिया से कहाँ गया? पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले सुर के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, किस शरीर में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत कौन था जिसका पुत्र मारीची हुआ? ये राजा ऋषभ देव का पुत्र था। राजा ऋषभ देव की दो पत्नियां थी और एक से 99 पुत्र हुए थे, एक से एक और दो पुत्रियां थी।